परिशिष्ट वन खांग याओ वेई, यह परिशिष्ट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक तानसेन द्वारा लिखा गया है। खांग याओ वेई 1858 से 1927 ईस्वी को सुनियात सेन, लियांग चिछाओ एवं लियू सयून के साथ आधुनिक चीनी इतिहास का मुख्य व्यक्तित्व माना जाता है। जिस काल में वह पैदा हुए वह बदलाव और अशांति का काल था। सुन यात सेन ने क्रांति का रास्ता अपनाया, जबकि उन्होंने राजगद्दी के अधीन सुधारों की बात कही। अपने जीवन के अंत तक वह छिंग राजवंश के एक वफादार और आज्ञाकारी अधिकारी बने रहे। खांग याओ वेई कुआंगतुंग राज्य में कुआंगचोउ के निकट नानहाय नामक तालुके के एक विद्वान अधिकारी के घर में 1858 ईस्वी में पैदा हुए। उनके दादा खांग तजानसियो ने 1846 ईस्वी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की तथा उन्होंने कुआंगतुंग राज्य में लिनसान एवं लियानचोउ में शिक्षा विभाग के उप निदेशक के रूप में कार्य किया। खांग याओवेई के पिता खांग ताछु चियांगसी में जिला मजिस्ट्रेट थे। खांग परिवार ने थाइपिंग आंदोलनकारियों के विरुद्ध मांचू सरकार का समर्थन किया। फलस्वरूप जब थाइपिंग आंदोलन को दबा दिया गया तब इस परिवार का स्थानीय बोलबाला हो गया, लेकिन थाइपिंगों के विरुद्ध अभियान की कीमत भी इस परिवार को चुकानी पड़ी। याओवेई के पिता की अभियान से लौटने के पश्चात 1868 ईस्वी में तपेदिक से मृत्यु हो गई। तब याओवेई केवल 10 वर्ष के थे। खांग याओवेई की शिक्षा का आरंभ उनके चाचा की देखरेख में महान विद्वता मध्यस्थता का सिद्धांत, साहित्यिक पड़ताल तथा पितृभक्ति की श्रेष्ठ रचना जैसी थांग कविताओं के साथ हुआ। पिता की मृत्यु के बाद याओवेई की शिक्षा खांग तजानसियो के संरक्षण में हुई। उनके दादा ने उन्हें सुंग के नौ कन्फ्यूशियसवादियों के विचारों एवं शिक्षाओं से अवगत करवाया। जब वह 12 वर्ष के हुए तब उनके दादा ने उन्हें प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए एक विशेष शिक्षक के अधीन उनका अध्ययन प्रबंध भी किया। लेकिन खांग याओवेई जब 1876 ईस्वी में इस परीक्षा में बैठे तो इसमें पास नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने कुआंगतुंग के एक प्रसिद्ध कन्फ्यूशियसवादी विद्वान चुतजी छी, जो उनके दादा के मित्र थे, से शिक्षा ग्रहण करनी आरंभ कर दी। उसी वर्ष उनकी शादी चांग मियां ओहुआ से, जो उनसे 3 वर्ष बड़ी थी और जिनसे उनकी सगाई 7 वर्ष की आयु में हो गई थी, शादी हो गई। एक वर्ष के बाद पानी में डूब जाने के कारण उनके दादा की मृत्यु हो गई। इस घटना से उदास होकर उन्होंने 1879 ईस्वी में घर छोड़ दिया और तजशियाओ पर्वत पर जाकर साधना करनी आरंभ कर दी। यहाँ पर उन्होंने एक ताओवादी साधु का जीवन व्यतीत किया तथा ताओ एवं बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। कुछ महीनों के बाद अपने एक चाचा के जोर देने पर उन्होंने एक भिक्षु का जीवन त्याग दिया। 1879 ईस्वी और 1884 ईस्वी के बीच खांग याओवेई ने अपना अधिकतर समय पाश्चात्य ग्रंथों, नौ कन्फ्यूशसवादी लेखकों की रचनाओं, सरकारी संगठन से संबंधित पुस्तकों तथा बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किया। जब उन्होंने 1879 ईस्वी में हांगकांग का दौरा किया तब वह अनुशासित पाश्चात्य प्रणाली से बड़े प्रभावित हुए। 1882 ईस्वी में पेचिंग से लौटते समय उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की एक और झलक शंघाई में देखी। अब उन्होंने पश्चिम के बारे में और अधिक सीखने का इरादा कर लिया। उन्होंने पाश्चात्य इतिहास, विज्ञान और भूगोल पर चीनी भाषा में अनुवादित पुस्तकें खरीद ली, लेकिन उन्होंने अपनी दिलचस्पी ज़्यादातर पाश्चात्य राजनीतिक प्रशासन से संबंधित विषयों पर केंद्रित की। 1884 से 85 ईस्वी में याओवेई कन्फ्यूशियसवादी बौद्ध एवं पाश्चात्य विचारों में तालमेल ढूंढने में लग गए। 1886 ईस्वी और 1889 ईस्वी के बीच उन्होंने कन्फ्यूशियसवाद का एक सुधारक के रूप में अध्ययन, ए स्टडी ऑफ कन्फ्यूशियस एज ए रिफॉर्मर नामक पुस्तक की रूपरेखा तैयार की, जो 1895 ईस्वी में संपन्न हुई। इस पुस्तक में उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि कन्फ्यूशियस परिवर्तन एवं प्रगति में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि पाश्चात्य संस्थाओं और विद्वान से संबंधित तत्वों को चीन में लाया जाए। इसी दौरान उन्होंने दो और पुस्तकें लिखी, सार्वभौमिक मानवीय सिद्धांत यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनकाइंड तथा दार्शनिक खांग के आंतरिक व बाह्य ग्रंथ द इनर एंड आउटर बुक्स ऑफ द फिलोसफर कांग। चीन और जापान के बीच हुई 1895 ईस्वी की अपमानजनक शिमोनोसेकी संधि से अप्रसन्न होकर उन्होंने 18,000 अक्षरों का एक प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने तीन प्रकार के निम्नलिखित सुधार एवं परिवर्तनों की आवश्यकता पर जोर डाला। आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रणाली में सुधार, राजधानी का पेचिंग से सियान ले जाया जाना क्योंकि पेचिंग विदेशी शक्तियों से काफ़ी असुरक्षित थी, चीनी सेना का आधुनिकीकरण। उन्होंने चिंग सरकार को सुझाव दिया कि वह अपनी आय बढ़ाने के लिए करों में बढ़ोतरी करे, रेलवे व्यवस्था में सुधार करे, जहाजरानी एवं कल कारखानों को प्रोत्साहित करे, खनिज स्रोतों को विकसित करे, चीनी मुद्रा का एकीकरण करे तथा कार्यशील डाक प्रणाली की स्थापना करे। प्रार्थना पत्र ने योवेई के कन्फ्यूशसवादी विचारों को भी प्रकट किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कन्फ्यूशस को धर्म का संस्थापक माना जाए, कन्फ्यूशसवाद को राज्य धर्म का दर्जा दिया जाए तथा 551 ईस्वी पूर्व कन्फ्यूशस का जन्म वर्ष को चीनी इतिहास का प्रथम वर्ष माना जाए।